नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीवान जिले में 200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी लॉटरी के माध्यम से स्वयं कर सकेंगे साक्षात्कार बोर्ड का चयन। केंद्रीय जल आयोग ने राज्य के जलाशयों को संकट से बचाने के लिए 6 जलाशयों में गंगा जल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी। और पूर्वी चंपारण जिले को चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज सीवान जिले को 200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात देंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री आज सीवान जिले के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास योजनाओं का शिलान्यास शुभारंभ करेंगे। इस दौरान श्री कुमार मैरवा स्थित निर्माणाधीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल सीवान का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे मेडिकल कॉलेज परिसर में जीविका सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री CSC मैरवा ANM कॉलेज मैरवा का भी निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद राजेंद्र स्टेडियम के पास जल जीवन हरियाली पार्क पंच मंदिर का भी निरीक्षण करेंगे और सरोवर में मछली भी छोड़ेंगे। तत्पश्चात राजेंद्र स्टेडियम में भी श्री कुमार एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरे को लेकर जिले वासियों में उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीवान से आकाश कुमार।
बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की साक्षात्कार प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। धन के अनुसार अब साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थी स्वयं लॉटरी निकालकर अपने साक्षात्कार बोर्ड का चयन कर सकेंगे। इससे पहले साक्षात्कार बोर्ड का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता था। ये बदलाव 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार से लागू हो गया है। आयोग ने कहा है कि साक्षात्कार को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। केंद्रीय जल आयोग ने राज्य के जलाशयों को संकट से बचाने के लिए गंगा जल आपूर्ति की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। आयोग ने योजना के PPR के तहत पहले चरण में प्रदेश के 6 जलाशयों को गंगा जल आपूर्ति की स्वीकृति दी है। इस चरण में लखीसराय के बासकुंड और मोरवे, जमुई के अमृत श्रीखंडी, जमुई के गरही और आंजन तथा मुंगेर के जालकुंड में कार्य किया जाएगा। इस योजना के तहत मॉनसून अवधि में गंगा जल को पाइपलाइन के जरिए दक्षिण बिहार के जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए शुरुआत में 132 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन स्थापित होगी। इस योजना से नवादा, लखीसराय, जमुई और मुंगेर जिले को सूखे की समस्या का समाधान होगा। वहीं जलाशयों में वर्ष भर पानी रहने के साथ ही बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। प्रदेश में अब व्यावसायिक भवनों के लिए उपलब्ध जमीन के 70% हिस्से पर भवन निर्माण किया जा सकेगा। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया। इससे पहले व्यावसायिक भवनों के 40% हिस्से में ही भवन निर्माण का प्रावधान था। पंचायती राज विभाग में 74 पंचायत भवनों की निर्माण गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई है। विभागीय मंत्री दीपक प्रकाश ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित एजेंसियों को एक सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। प्रदेश में 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद होगी। ये खरीद पैक्स और व्यापार मंडलों के अलावा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जाएगी। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ये बीते वर्ष से 160 रूपये प्रति क्विंटल अधिक है। इधर गेहूं बिक्री के लिए किसानों का ऑनलाइन निबंधन शुरू हो गया है। ई सहकारी पोर्टल के किसान कॉर्नर विकल्प पर जाकर निबंधन किया जा सकता है। पहले से निबंधित किसानों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था। ये मंच सहकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को एक साथ एक ही डिजिटल मंच पर लाता है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना पर एक नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पिछले दो दशकों में भारत की सबसे गतिशील महानगरीय अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, विनिर्माण और सेवाओं में तेजी से बढ़त के कारण हुआ है। हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना को शहर के लिए एक भरोसेमंद, कुशल और टिकाऊ शहरी गतिशीलता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। हैदराबाद मेट्रो के प्रथम चरण में 69.2 किलोमीटर में फैले 3 कॉरिडोर शामिल हैं। 30 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति के तहत इस परियोजना की उच्चतम स्तर पर समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्णायक निर्देश जारी किए कि संस्थागत और वित्तीय बाधाएं परियोजना में रुकावट न डाले। प्रोजेक्ट के पीपीपी स्ट्रक्चर को देखते हुए तेलंगाना सरकार, आर्थिक मामलों के विभाग और शहरी विकास मंत्रालय को मेट्रो की सुचारू और समय पर शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। इससे कई एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयास हुए। इन प्रगति संचालित हस्तक्षेपों ने परियोजना के एक महत्वपूर्ण चरण में स्पष्टता और गति प्रदान की। नतीजतन हैदराबाद मेट्रो सभी 3 कॉरिडोर में समन्वित तरीके से आगे बढ़ पाई, जिसमें लगातार सेक्शन चालू होते गए। इस तेजी से यात्रियों को आकर्षित किया। हैदराबाद मेट्रो ने शहर के कुछ सबसे भीड़ भाड़ वाले कॉरिडोर पर यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है, सुरक्षा में सुधार किया है और एक भरोसेमंद विकल्प प्रदान किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
जदयू में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की वापसी की खबरों को लेकर पार्टी में विरोध की स्थिति देखी जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने उनके पार्टी विरोधी बयानों को याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें पार्टी में वापसी की आवश्यकता क्यों आ पड़ी है।
नहीं, हमको मालूम नहीं है कि आ रहे। कल तक संन्यास ले रहे थे और नीतीश कुमार जी को फिनिश कर रहे थे। अब आज क्या आवश्यकता पड़ी कि नीतीश कुमार जी के साथ आना चाहते। दरवाजा खुले है, बंद है तो बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत क्या पड़ी है कि जो कल तक फिनिश कर रहे थे और उसी के यहाँ आज माथा टेकने के लिए आज घूम रहे।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी आरसीपी सिंह की वापसी की संभावना पर नाराजगी व्यक्त की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। पूर्वी चंपारण जिले को चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि जिले को लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। इधर समारोह में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, पुलिस मुख्यालय के तत्कालीन एडीजी और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी कुंदन कृष्णन को भी विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर और मधुबनी के जिलाधिकारी को भी विधानसभा चुनाव के दौरान अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को डिजिटल भुगतान के जरिए उपभोक्ता संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इडिकॉन कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह को ये सम्मान प्रदान किया। श्री सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर और डेटा विश्लेषण के माध्यम से राजस्व संग्रहण बेहतर होने के साथ ही उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं मिल रही हैं। बोधगया में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की शुरुआत हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कालचक्र मैदान में आयोजित ये महोत्सव 24 जनवरी तक चलेगा।
इस वर्ष महोत्सव में 7 देशों के कलाकार अपनी पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। इनमें भारत, जापान, लाओस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड के कलाकार शामिल होंगे। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, शांति, अहिंसा और करुणा के संदेश को प्रसारित करने के साथ ही विभिन्न देशों की बौद्ध संस्कृति, परंपरा और लोक कलाओं को एक मंच पर प्रस्तुत करना है। महोत्सव में आज प्रसिद्ध गायक जावेद अली, कल रूप कुमार राठौर, जबकि अंतिम दिन भूमि त्रिवेदी अपनी प्रस्तुति देंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए बोधगया से धर्मवीर भारती।
पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के पेठिया बाजार में मां संतोषी मंदिर के पास कल देर शाम भीषण आग लग गई। अगलगी की घटना में लगभग एक दर्जन दुकानें और लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। स्थानीय विधायक सह कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित दुकानदारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
मैं हूँ दिल्ली से और जानकारी मिली कि पेठिया बाजार में लगभग 9-10 दुकान में और बड़ा से स्टॉक भी था, छोटे पूंजी के लोग थे और बहुत बड़ी बर्बादी हुई है, तो दुखद है। हम प्रयास करेंगे कि कानूनी तौर पर इनको किस तरह से मदद किया जाए, उसके लिए प्रयास भी करेंगे और व्यक्तिगत तौर भी जो मदद होगा इनके लिए हम मदद करने का भी।
पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में गंडक नदी पर प्रस्तावित पुल योजना के अधर में लटकने पर विभिन्न दलों के नेताओं के साथ आम नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन एनएच 727 गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क पर किया गया। ये पुल बिहार के शास्त्री नगर और उत्तर प्रदेश के बेलवनिया के बीच प्रस्तावित है। इधर जिले में शराब कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी के दौरान नौरंगिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो तस्करों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। और अब खबरें खेल की। रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप के तहत फाइनल मुकाबला आज बिहार और मणिपुर के बीच खेला जाएगा। ये मैच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में होगा। भुवनेश्वर में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार की टीम चैंपियन बनी है। बिहार ने ओडिशा को फाइनल में 25-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। लखीसराय में 28 से 30 जनवरी तक बिहार राज्य सीनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता बिहार राज्य कबड्डी संघ के तत्वाधान में आयोजित होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, 5 वर्षों में राज्य से समाप्त कर दी जाएगी गरीबी। हिंदुस्तान की प्रमुख खबर है, पीएम किसान सम्मान के लिए 29 लाख किसानों का ही निबंधन, विशेष अभियान सिर्फ एक तिहाई किसानों के आईडी बने। दैनिक भास्कर लिखता है, सोना 1,55,000 के पार, चांदी उछलकर 3,20,000 पर पहुंची। प्रभात खबर ने लिखा है, मुस्कुराता मेट्रो पथ, सगुना मोड़ से गोला रोड तक एलिवेटेड रूट तैयार। आज अखबार ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को तरजीह देते हुए लिखा है, बिहार में बंद सभी चीनी मिलें होंगी चालू। राष्ट्रीय सागर लिखता है, कर्तव्य पथ पर इस बार नहीं दिखेगी बिहार की झांकी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीवान जिले में 200 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी लॉटरी के माध्यम से स्वयं कर सकेंगे साक्षात्कार बोर्ड का चयन। केंद्रीय जल आयोग ने राज्य की जलाशयों को संकट से बचाने के लिए 6 जलाशयों में गंगा जल आपूर्ति योजना को मंजूरी दी। और पूर्वी चंपारण जिले को चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।